assumption.
तो ये ब्राह्मण परिवार ऐसा अद्भुत परिवार है जो भगवान ने रचा है कि कहीं पर भी जाओ तो नए लोगों से मुलाकात होती है, पर ऐसा नहीं लगता है कि वो नए हैं और अनजाने हैं, कि ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से मिले हुए हैं और लंबे समय से उनको जानते हैं, जन्म जन्म साथ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है ये स्ट्रेंजर्स है, ऐसा लगता है ये सब कौन है, अपने हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये हर एक ब्राह्मण आत्मा को ऐसा लगता है, और ऐसे लगने का एक मुख्य कारण है कि सबका कनेक्शन एक से है। सुबह की साकार मुरली, हम सब कौन है, भाई और बहन। ये दुनिया डर्टी दुनिया है, इस दुनिया में विकारी दृष्टि है, परंतु यहां हमारी आत्मिक दृष्टि है, और आत्मिक दृष्टि के नाते हम सभी वसुधैव कुटुंबकम एक है, एक में है, एक से है, एक के लिए है, फॉर द इन द फ्रॉम द, ऐसा हमारा जीवन है। तो हमको बहुत खुशी है कि हम आप सबके बीच में आए, और कुछ ज्ञान की चर्चा करेंगे और कुछ अनुभव भी करेंगे। जिस टॉपिक पर हम बोलने वाले हैं, सोच रहे उस पर बोले या कुछ और बोले, या उसको छोड़ दे? युक्ति से मुक्ति, कौन सी युक्ति करे कि जिससे हम मुक्त हो जाए। हर एक आत्मा की प्यास मुक्ति की है। संसार, बंधन, देहधारी, संबंध, यहाँ की बातें, यहाँ के कार्य, यहाँ के कर्म, सब बांधने वाली है। क्या हम करें कि जिससे सतयुग में नहीं, परम धाम में नहीं, यहां पर मुक्ति का अनुभव करना है। मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं, अभी। तीन प्रकार की मुक्ति है, एक है मुक्ति, एक है जीवन मुक्ति, तीसरी है संगम युग की मुक्ति। अभी यहां ही ऐसे जी रहे जैसे कि मुक्त है। तुम मुक्त गगन के पंछी हो। कुछ दिन पहले वरदान था, बंधन तो बंधन है, चाहे सोने की कप, सोने की जंजीरें हो या हीरे की डाली, बंधन तो बंधन है। एक संकल्प आप सबको दे रहे हैं, जो अपनी डायरी में नोट करके रखना है, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं। बहुत शक्तिशाली संकल्प है कि मुझ आत्मा को कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है, मुझे स्वयं को मुक्त रखना है, क्योंकि जो मुक्त चेतना है वही दूसरों को मुक्त कर सकती है। जो स्वयं बंदी गृह में है, जो स्वयं जेल में है, कारागार में है, वो दूसरों को कैसे मुक्त कर सकेगा? जो स्वयं विकारों में फंसा है, व्यर्थ में लगा हुआ है, निगेटिव में है, क्या वो दूसरों को विकारों से, विषयों से, दलदल से, वासनाओं से मुक्त करा पाएगा? इसके लिए संगम युग पर एक लक्ष्य रखना है कि अब तक जो बंधन बने बन गए, पर अभी नए बंधन नहीं बनाने हैं। अब तक जो संबंध बने वो बंध गए, पर अभी नए क्रिएट नहीं करने हैं। और जो पुराने भी है उनको क्या करना है, चुकतु करते जाना है, Settle the past accounts and do not create new accounts. नए क्रिएट नहीं करना है, पुराने धीरे धीरे खत्म करने हैं, ये एक लक्ष्य रखना है. इसके लिए मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है. इस निर्बंधन अवस्था के लिए बाबा ने बहुत सारी युक्तियां दी है, और इनमें से कोई भी युक्ति हम अपनाएं तो निर्बंधन रहेंगे. तो आज हम आपको ऐसी कुछ युक्तियां बताएंगे, कुछ बातें जो कि हरेक को करनी है. अगर कर रहा है तो बहुत अच्छा, उसमें तीव्रता लानी है, इंटेंसिटी और निरंतरता लानी है, कंसिस्टेंसी. यदि नहीं कर रहा है तो करना है. एक बौद्ध सन्यासी एक गांव में जाता है और थका है, बहुत पैदल यात्रा की है. तो गांव में पनघट होता है, पनघट अर्थात जहां पर कुआ होता है, पानी भरा जाता है. उसके बाजू में थोड़ी जगह होती है, तो वो एक पत्थर सिराने लेता है और सो जाता है क्योंकि थक चुका है. थोड़ी देर में गांव की महिलाएं वहां पर पानी भरने आती है कुएं में. तो एक महिला कहती है उस सन्यासी को देखकर, सन्यास ले लिया पर अभी भी तकिया से मोह नहीं गया. सन्यास तो ले लिया पर तकिया अभी भी पकड़ के है. तो सन्यासी, युवा सन्यासी बात को सुन लेता है और जाग जाता है और वो पत्थर बाहर फेंक देता है. तो दूसरी एक महिला कहती है, सन्यास ले लिया पर अकड़ अब तक नहीं गई, अहंकार तो बहुत है, क्रोध बहुत है अभी भी. तो वो खड़ा हो जाता है. तीसरी महिला आती है, वो कहती है कि हम तो महिला आती रहेगी जाती रहेगी, तुम क्यों अपनी नींद खराब कर रहे हो. चौथी एक महिला आती है, पनिहारिन, वो कहती है चाहे हम महिलाएं तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हारी निंदा करें, तुम क्यों डिस्टर्ब होते हो, तुम हरि के गुण गाए जाओ, दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम अपने नियम और अपनी धारणाएं और अपनी मर्यादाएं और अपने जीवन को हमको देखकर क्यों बदलते हो. दुनिया जो कहने लगे कहने दो, आग लगे बस्ती में और तुम रहो अपनी मस्ती में. तो मुक्त होने के लिए बाबा ने युक्तियां बताई है. वैसे आपको हम 26 बातें बताएंगे. ये सारी धारणाओं की बातें हैं, मर्यादाओं की बातें हैं. अगर इनमें से ब्राह्मण कुलभूषण सेंटर निवासी कोई भी एक बात भी नहीं करते हैं तो कोई ना कोई बंधन निर्माण होगा, क्रिएट होगा और उसमें फंस जाएंगे. अवज्ञा होगी. सबसे पहला ए फॉर अमृत वेला. पिछले एक मास में ऐसे यहां पर कितने हैं, सभी सामने देखना, इधर उधर नहीं देखना, अब इधर उधर नहीं देखना बाजू वाले को, ऐसे कितने हैं जिन्होंने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया एक मास में? 15 दिन वाले पिछले 15 दिन में एक बार भी मिस नहीं किया। पिछले एक हफ्ते में जिन्होंने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, और जिन्होंने आज ही अमृत वेला मिस किया वो कितने तो इस ब्राह्मण जीवन की जो सबसे पहली श्रीमत है वो है अमृत वेला। सोचो कि यदि किसी शहर में, यहीं की बात ले लो मियांपुर, यहां पर सुबह 4 और 5 बजे के बीच में पानी आता है पीने का, दिन भर नहीं आता है, ठीक है, और कोई माता गृहिणी रोज पानी भरती है और एक दिन सो गई, तो उसको क्या करना पड़ेगा? दिन भर फिर बकेट लेकर थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा दे दो, आजू बाजू मांगना पड़ेगा ना, क्योंकि टाइम वही है 4 to 5 पानी आने का, वॉटर, बाकी दिन भर नहीं आता है। परमात्मा प्रेम बरसता है अमृत वेला, और जिसने उस समय मिस कर दिया फिर उसको दिन भर बकेट लेकर सुख दे दो, शांति दे दो, थोड़ा सा प्रेम दे दो, थोड़ी मेरी केयर करो, मेरे तरफ ध्यान रखो, मुझे अटेंशन दो, मेरे लिए योग करना। मधुबन में लोग आते कहते हमारे लिए योग करना। एक माता ने कहा था मेरे बेटी के को आज देखने के लिए लड़का आ रहा है, भाई जी शादी पक्की हो जाए इसके लिए योग करना। एक माता पूछ रही थी मेरे बेटी की शादी है मधुबन में भेजू क्या इनविटेशन? दे दो दे दो दे दो, प्रेम दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, प्रशंसा दे दो, हमने इतनी अच्छी सेवा की, थोड़ा तो कोई करो, इतना अच्छा हमने सेवा की, इतना अच्छा भोजन बनाया, तारीफ तो करो, अच्छा है, रंगोली देखो कितनी अच्छी बनाई, कोई तो बोले बहुत अच्छी है, कोई तो पूछे किसने बनाई तो हम कहेंगे हमने। चाहिए सूती कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं अपने आप वो ऑटोमेटिक अकाउंट में जमा हो जाता है, हमें किसी की स्तुति प्रशंसा तारीफ एप्रिसिएशन रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है। हमारी सेवाएं निस्वार्थ है, निष्काम है, सेल्फलेस सर्विस, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ मेनी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ मेनी। तो सबसे पहला काम जो करना है कल से, फॉर 7 days, फर्स्ट स्टार्ट विथ 7 days का प्रोजेक्ट, एक दिन भी मिस ना हो। तैयारी करनी पड़ेगी थोड़ी, रात में अलार्म क्लॉक या किसी, सब कुछ जिन्होंने ट्राई कर लिया और उसके बाद भी अमृत वेला नहीं होता है वो किसी को कहो कि भाई मुझे फोन करे। किसी को क्या कहो, अपने दोस्त को, किसी साथी को, उनको कहो कि मुझे फोन करे और उठाओ, थोड़ी दया करो मुझ पर। एक माता दूसरे माता को फोन करे 3:30 बजे 4:15 बजे, जागो भगवान आया है, खटिया के सामने खड़ा है, उठो। वरदानी वेला है। अभी अभी मुरली चली थी शांतिवन 15th November 2018, मुरली थी 15th November 2009 की रिकॉर्डेड, अमृत वेला बाबा शक्ति वरदान बांटते हैं और तीव्र पुरुषार्थी बन जाती है आत्मा। ऐसी आत्मा है जो अमृत वेला करती है और शक्तिशाली अनुभव करती है, बाप के दिल तख्त नशीन बनती है। और कई लोग उठते हैं और फिर सो जाते हैं, और कोई लोग उठते हैं और नींद ही नींद, जिनको बहुत नींद आती है वो चलते फिरते अमृत वेला करे, जिनको उसके बाद भी नहीं आती है, कम नहीं होती है, थोड़ा पढ़ाई करे, कुछ सुनो बाबा की ऑडियो अव्यक्तवाणी, या देखो वीडियो अव्यक्तवाणी, कुछ भी करो, पर अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। अमृत वेला मिस अर्थात गाड़ी को पटरी पर डाला ही नहीं तो दिन में गाड़ी का एक्सीडेंट होगा, कहां कहां संभालोगे, इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं कि उधर जाऊं। सुबह सुबह अमृत वेला पटरी पर डाल दो, आत्मा चार्ज हो जाती है, सुबह सुबह पावर आ जाती है, उसमें शक्ति भर जाती है। और यदि हम श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं तो भगवान की मदद मिलेगी ऐसा मत सोचना। परमात्मा मदद कृपा आशीर्वाद उन बच्चों को स्वतः मिलती है जो श्रीमत पर है, मांगने से नहीं मिलती है। बाबा मेरी मदद करो कहने से नहीं होगा। ए फॉर अमृत वेला करेंगे सब कल से। ये सभा पता है ना कौन सी है? इंद्र सभा, धर्मराज की अदालत, ट्रिब्यूनल, ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहां हम बैठे। मंदिरों में जिन देवियों की पूजा हो रही है वो सब यहीं पर है ना? हमारी बहने वही है कि कोई और है? वही है ना? जिनके सामने भक्त झुक रहे हैं वो यही है, जिनका भक्ति मार्ग में गायन है वो यही है। चाहे किसका स्वभाव कैसा और क्या भी हो, भगवान ने निमित्त बनाया है और भगवान ने यहां रखा है। इस स्थान पर बैठने का अधिकार केवल पवित्र आत्माओं को ही है, या कोई भी बैठ सकता है। ये स्थान बहुत प्योर है। मधुबन में एक बार एक बहन आए थे जो कि प्रोफेसर थे, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, और हिंदी के बहुत बड़े प्रोफेसर। अभी अभी ज्ञान में आए थे, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, तो उनको एक बार वहाँ हॉस्पिटल में, एक बाबा का कमरा है वहाँ, मुरली क्लास होती है, संदली है, तो उनको कहा गया था आप मुरली सुनाओ। तो उन्होंने कहा था मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, हिंदी तो मैं जानती हूँ, हिंदी तो सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ाती हूँ, पर ये स्थान बहुत प्योर है, इसमें बैठने की मेरी पावर नहीं है, इसलिए ये स्थान बहुत प्योर है। और यहां पर रहने वाली जो बहनें हैं ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, वो साधारण नहीं है। अगर वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी संसार में, नौकरी और सब कुछ, परिवार, पर उन्होंने अपने जीवन को इस यज्ञ की वेदिका में अर्पित किया। संसार की स्त्रियां क्या कर रही है और बहनें क्या कर रही है, संसार कैसा विकार में डूबा हुआ है और ये आत्माएं क्या कर रही है, तो ऐसी पवित्र आत्माएं जहां हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अपने यौवन को अर्पित कर दिया, वो आत्माएं साधारण आत्माएं नहीं है। तो इसका निरंतर स्मरण रखना कि ये जो स्थान है स्वयं मधुबन है, ये जो स्थान है भगवान का रचा हुआ है, और जिसने जो यहां रह रही है वो कोई अपनी अपनी मनमर्जी से नहीं, उसने रखा है उनको। लास्ट संडे की मुरली में था, निमित्त टीचर के प्रति सम्मान देना, अर्थात बाप का रिस्पेक्ट तुम्हें मिलेगा और बाप के दिल का स्नेह तुम्हें मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे अमृत वेला की। तो कल से प्रतिज्ञा की है ना यहां पर, अब भूलना मत अपनी प्रतिज्ञा को, कैसे भी करके युक्ति से। रात को थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा। वो जो टीवी में सीरियल कौन कौन देखता है, टीवी में सीरियल कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़ा थोड़ा न्यूज, यज्ञ का नियम है 10 o'clock गो टू स्लीप, मैक्सिमम 10:30, दैट्स इट। उसको खींचना नहीं है, टीवी इंटरनेट मोबाइल सोशल मीडिया और ये सारी चीजें, 10 स्लीप, क्योंकि सुबह उठ के बहुत सारे काम करने हैं। जस्टिस कृष्णा अय्यर भारत में आते थे, कृष्णा अय्यर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बहुत पहले थे, अभी अभी तो शरीर छोड़ दिया, द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, जिन्होंने 80 से भी ऊपर लॉ के ऊपर किताबें लिखी, ही वॉज फ्रॉम साउथ। वो मधुबन में आते थे 80s में 90s में, कई बार आए हैं। इंद्रप्रस्थ में रहते थे, पांडव भवन में, उनकी आदत थी 9 बजे सोने की, एंड यूज टू गेट अप एट 2 o'clock, 2 बजे उठने की, क्योंकि उनको लॉ की किताबें या पढ़ाई करनी थी। तो मधुबन में जब आते थे और कल्चरल प्रोग्राम में, वो कहते थे मुझे माफ करना, मैं नहीं आ सकता, या उठ के चले जाते थे, क्योंकि उनको सोना था। क्यों सोना था? क्योंकि उनको अपना कार्य करना था। वो व्यक्ति संसार का, उसको लौकिक कार्य करना है, हम भगवान के बच्चे, हमें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संसार का कल्याण करना है, विश्व को सकाश देनी है, और हम सो रहे। ना तो हम अपनी स्थिति बना सकेंगे, ना संसार का कल्याण कर सकेंगे। तो इस धारणा को पक्का करना, युक्ति है अमृत वेला। दूसरा बी फॉर ब्रह्मचर्य। सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं, सुबह की मुरली सुनी ना, संसार में वो जो बहन भाई है उनकी भी कभी कभी गंदी वृत्ति हो जाती है। यदि जो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है उनकी यदि गंदी दृष्टि हो जाती है, तो 1000 गुना नीचे है उनसे भी। इसके लिए रिवाइज करना है ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। ये अलौकिक परिवार है, इस अलौकिक परिवार में लौकिकता नहीं लानी है, अलौकिक को अलौकिक ही रहने देना। नो पर्सनल रिलेशनशिप, नो फैमिलियरिटी, डिटैचमेंट, लव, लव हो डिटैचमेंट के साथ। यहां पर नो बिजनेस डीलिंग, ये परिवार है अलौकिक परिवार, भगवान का परिवार, प्रभु परिवार। तो इसमें उस लौकिक की चीजें यहां घुसानी नहीं है। इसके लिए फिर से सभी अपनी ब्रह्मचर्य की धारणा को रिवाइज करेंगे, प्यूरिटी की धारणा को रिवाइज करेंगे, कंप्लीट प्यूरिटी विद 0% इम्प्यूरिटी। मनसा वाचा कर्मणा, वो सारी चीजें देखना और सुनना बंद कर देना है, जिससे इम्प्यूरिटी के जर्म्स वायरस आते। कारण ढूंढना है कहां से इम्प्यूरिटी आ रही है एंड स्टॉप दैट। कोई व्यक्ति है, कोई संबंध है, बाबा कहते कैची चलाओ वैराग की और सारे बंधन को तोड़ दो। तो अपनी प्यूरिटी को फिर से मजबूत करना है, अनटच्ड प्यूरिटी। इस शरीर को कोई हाथ न लगा पाए। ऐसी प्यूरिटी सभी बहनें और सभी माताएं, ऐसी प्यूरिटी सभी कुमार और सभी भाई, ऐसी प्यूरिटी अनटच्ड। एक कन्या है जो कि कुएं में पानी भर रही है, एक युवक आता है, वो जो घड़ा है बहुत बड़ा है उसके सिर पर रखना है उसको, तो वो कोशिश कर रही है पर उठ नहीं रहा है। तो वो युवक कहता है क्या मैं मदद करूं? वो कन्या कहती हां, पर एक शर्त है, अंग से अंग ना लगे। वो कहता है प्रॉमिस, और वो उसके घड़े पर वो मटकी रखता है और वो चली जाती है। कुछ समय के बाद दोनों के मां बाप उन दोनों की शादी कर देते हैं। उनको पता नहीं है किसके साथ शादी हो रही है, और शादी के बाद वो एकदम आमने सामने आते हैं। वो कन्या कहती है अपनी प्रॉमिस याद रखना, अपनी प्रतिज्ञा याद रखना, जो वादा किया था ना वो याद रखना। आप काम यदि कहीं से आ रहा है, भावनाएं, वृत्ति, दृष्टि, व्हाट्सएप, मोबाइल, सोशल मीडिया, स्टॉप। ये सेकंड, थर्ड सेंटर एटमॉस्फियर, सी फॉर सेंटर का वायुमंडल। एक एक सेंटर निवासी का ये परम कर्तव्य है कि यहां का वायुमंडल शक्तिशाली बनाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको यहां का वायुमंडल क्या करना है, पावरफुल बनाना है। तो यहां आकर यदि कोई बिजनेस की बातें चालू कर देता है, या संसार की बातें चालू करता है, या पॉलिटिक्स की चर्चा करने लगता है, या व्यर्थ की बातें करता है, या निंदा और ग्लानी करता है एक दूसरे की, या बहनों की ग्लानी करता है, तो वातावरण को अच्छा कर रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। इसके लिए तीसरी चीज है, जो भी सेंटर निवासी भाई बहने हैं, यहां का वायुमंडल क्या करना है, पावरफुल। कैसे बनाएंगे पावरफुल? मौन से। बड़बड़ 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 नहीं करते रहना है यहां पर, मौन। दूसरा योग से। तीसरा ज्ञान सुनना, ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान की लेन देन करना, ज्ञान युक्त चर्चा करना। ऐसी चर्चा ना हो कि वो पूरी संसार की लौकिक चर्चा हो। दो लोग आपस में चर्चा करें तो कैसी चर्चा करें? आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा, आज बाबा ने वरदान में ये क्या कह दिया नई बात। अगर आपको आंध्रा का कोई व्यक्ति मिल जाए, आप यूपी के आपको मिलकर हमको बहुत खुशी हुई, ऐसा क्यों नहीं कहते? ऐसा तो हम नहीं कहते। तो ये हद है या बेहद? हद। तो बेहद में जाना है ना। तो सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बनाना है, इन दीवारों पर प्यूरिटी के वाइब्रेशंस से पेंट करना है, ताकि जो भी नई आत्मा आ जाए कुछ कहे बिना ही तीर लग जाए, उसको लगे कि मैं आश्रम में आया हूं। तो इसको क्या समझना है? आश्रम, योग आश्रम। उसके बाद में चौथी धारणा है डी, ड्रेस कोड। जितना हो सके स्वच्छ हो, जितना हो सके ऐसा ना हो कि जिसको देखकर किसी का आकर्षण हम में हो जाए। ऐसा ड्रेस ना हो और बैच लगा हुआ हो। हम मिलिट्री है ना, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री वालों को शर्म आती है क्या? वो तो बड़ा शान से घूमते हैं। सिख लोगों को शर्म आती है, ये पगड़ी कैसे पहनूं? ऑफिस में जाना इंटरव्यू के लिए कैसे पहनूं? निकाल के रखता है, पहन के जाता है। हॉस्पिटल की नर्सेस घूमती है हॉस्पिटल के ड्रेस में, नर्स के ड्रेस में, उसको लगता है ये कैसे मुझे लोग क्या कहेंगे, सोचती है क्या? तो हमको क्यों डर लगता है? बैच होना चाहिए। पर कई कई लोग इतना छोटा सा बैच लगाते हैं बटन वाला यहां, ताकि किसी को दिखे भी नहीं। अगर किसी ने बोला बैच का है तो है ना, दोनों काम हो जाते हैं उसमें। ये बैच भी सेवा करेगा। बैच तुम्हारा बाइबल गीता है, शास्त्र है। जितना हो सके लाइट ड्रेस और सेंटर पर वाइट, सेंटर पर वाइट। ये स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, पाठशाला है, यूनिवर्सिटी, यहां का ड्रेस कोड है। ये आर्मी कैंट है, मिलिट्री कैंट, स्पिरिचुअल मिलिट्री कैंट, स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी। तो अस्त्र शस्त्र होने चाहिए हमारे पास। तो चौथी चीज है ड्रेस कोड। इस्लाम धर्म में स्त्रियों के लिए 5 चीजें कही है ड्रेस के लिए, जो ध्यान में रखनी है स्त्रियों के लिए खास इस्लाम धर्म में। पहला, जिसमें हाथ, चेहरा और पैर बस इतने ही खुले हो, बाकी सब ढका, एक। दूसरा, ड्रेस ट्रांसपेरेंट ना हो, पारदर्शी। तीसरा, इतना रंग बिरंगी और भड़काऊ ना हो कि कोई आकर्षित हो जाए उस ड्रेस को देख के। चौथा, पुरुषों के जैसा ना हो। ड्रेस पुरुषों के जैसा ना हो। और पांचवा, ऐसा ड्रेस हो कि कोई देखे तो धार्मिक भावनाएं उत्पन्न हो, मां लगे, बहन लगे, देवी लगे। ये भी बहुत छोटा है, देवी साक्षात खड़ी है। वैसे ही पुरुषों के लिए भी ऐसे ड्रेस ना हो कि कोई आकर्षित हो जाए। सेंट, स्प्रे, पाउडर, मेकअप, टैटू, हेयर डाई, बहुत गोरा करने की कोशिश। कितना भी शरीर को गोरा कराओ, आत्मा तो काली है, कुछ नहीं होने वाला। कुछ दिन पहले मुरलियों में भी आया था ये पॉइंट। तो ड्रेस कोड, हजारों के बीच में हमको ये अनुभव हो, ये ड्रेस अनुभव कराएगा कि हम वो नहीं है संसार के लोग, हम दूसरे हैं। व्हाइट का ये महत्व है कि हमको याद दिलाएगा कि हम अलग है, ये अलग। और अगर हम उनके जैसे हम भी पहनने लगे तो हम मिक्स हो जाएंगे। हमें अपनी अलग से, सन्यासी जो होता है वो अपने गेरुवु वस्त्र पहनता है, सैफ्रन, वो अलग समझता है अपने आप को। हम बेहद के सन्यासी है, वाइट हमारी पहचान है, कफन है, ये कफन लिए घूम रहे हैं क्योंकि मर चुके हैं इस दुनिया से। नव जन्म, पुनर्जन्म हुआ है हमारा, मर्जीवा जन्म है ये, न्यू बर्थ। उसके बाद में है पांचवा ई, एक्सचेंज ऑफ मनी, बिजनेस मैटर एट सेंटर। ये सारे सेंटर निवासियों के नियम है, रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सेंटर। सेंटर पर आकर पैसों की लेन देन, बिजनेस की बातें, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। उसके बाद है एफ, फूड। बाहर का अभी भी खाने को किसको इसको दिल होता है, बहुत अच्छी बनी है गुलाब जामुन, नहीं ना, छोड़ दिया पूरा, पूरा गया। और चॉकलेट, वो तो मशीन है, मशीन मेड। और आइसक्रीम, वो भी मशीन मेड है, मशीन अपने आप काम करती है क्या? एक भाई आबू आ रहा था, ट्रेन में बैठा हुआ था, तो कुमार था, तो उसके साथ कुछ बाहर के लोग आके बैठ गए ट्रेन की कंपार्टमेंट में। उन्होंने कहा थोड़ा सा खाना खाओ ना हमारे साथ आप। उसने कहा नहीं नहीं हम बाहर का नहीं खाते। तो उन्होंने कहा बाहर का नहीं, घर का ही है, घर पे बनाया है। तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। उसने कहा घर पे हमारी माँ ने बनाया है। उसने कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा अरे बिस्किट तो खा लो। तो उसने सोचा हाँ बिस्किट तो मैन मेड नहीं है, मशीन मेड है, तो ये तो खा सकते हैं। तो उसने बिस्किट खा लिए। फिर उसको थोड़ा नशे जैसा हुआ, सो गया। जब उठा तो अजमेर आ गया था, उसका सारा सामान गायब, सब लेके चले गए। तो बाबा ने सूक्ष्म मर्यादाएं दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक। कितने लोग हैं यहां पर जो रोज भोग लगाते, माता है विशेष, और बाकी माता है नहीं लगाती, तो कौन कौन लगाते हैं, हाथ खड़े करेंगे? बस। और भाई में से भाई कहते हैं हम भोग नहीं लगा, हम तो खाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो म्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से मुझे पत्र पुष्प या फल भी देता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान प्रेम का प्यासा और भावना का भूखा है। गीता में लिखा है जो भोजन करता है और भोग नहीं लगाता है वो चोर है। इसके लिए आज से सभी माताएं जो भोजन बनाती है बाबा को भोग स्वीकार कराना है 24 घंटे में एक बार, ठीक है? और जो भाई भोजन बनाते हैं वो भी, और जो नहीं बनाते हैं वो याद में और दृष्टि देकर उसको स्वीकार करें, परंतु अनन्य भाव से भगवान को भोग। वो हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। और भोजन करना भी एक योग का पीरियड बनाना है, भोजन बनाते हुए भी मौन और योग में बनाया जाए, जो भी उसमें डाल रहे हो मौन में याद में, तो जो भी उसको खाएगा उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसके लिए भोजन का जो टाइम है कन्वर्ट इट इनटू पीरियड ऑफ योगा, उसको योग के अभ्यास में रूपांतरित करना है, ठीक है? लगाएंगे सभी, बाबा के सम्मुख लेके जाना, पहले बाबा को दृष्टि देने दो और फिर हम स्वीकार करेंगे, तो वो भोजन में पावर आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। जो घर में ज्ञान में नहीं चलते और जो विरोध करते हैं वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेंगे, इतनी पावर है उसमें। उसके बाद है जी, जी अर्थात गिव हैप्पीनेस ब्लेसिंग, गुड विशेस, सुख, दुआएं और शुभ भावना, शुभकामनाएं सबके प्रति। ये नियम है, मर्यादा है, युक्ति है इस ब्राह्मण परिवार की। चाहे कोई कितना भी विरोध करने दो, हमें उसको क्या शुभ भावना देनी है। एक दिन तो बदलेगा जरूर, कितना भी विरोध करने दो। ब्रह्मा बाबा का सब लोग बहुत सम्मान करते थे, जैसे ही परमात्मा पर उनके प्रति भी शुभ भावना नहीं छोड़ी। ऐसी ऐसी खबरें न्यूज़पेपर में आती थी और इतना विरोध, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, परंतु उनके प्रति भावनाओं को दूषित नहीं होने देना। तो जो लोग ज्ञान में नहीं आते, हम उनको कोर्स कराते हैं, मधुबन लेके गए, सब कुछ कराया, पर फिर भी वो नहीं सुनते, उनके प्रति थोड़ी सी घृणा और नफरत आ जाती है। कितना करने के बाद में भी कुछ नहीं आते, परंतु लंबा समय का पेशेंस, सबके प्रति कल्याण। जो विरोध कर रहे हैं, ग्लानी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं सबके प्रति, ये हमारे यज्ञ की मर्यादा है। बाबा ने कहा सहन करना है तुमको। संसार की आत्माएं अज्ञानी है, परवश है, विकारी है, दुखी है, निर्बल है। उसके बाद है एच। एच अर्थात होली कंपनी, सत्संग। रोज क्या करना है? सत्संग। और सबसे बड़ा सत का संग है एक तो शिव बाबा, दूसरा सत्संग है ये परिवार। इस परिवार का संग करना, होली कंपनी का संग करना, इस परिवार से रूठना, रूसना, नाराज होना, सेंटर आना बंद कर देना। ये जो परिवार है किला है, फोर्ट। इसके अंदर रहेंगे तो पाप कम होंगे या नहीं होंगे, बाहर रहेंगे तो पाप चालू, विकर्म चालू। इसके लिए इसके अंदर रहना, ये सबसे बड़ी युक्ति है एक। उसके बाद में आय। आय अर्थात इनकल्केट वर्चू, दिव्य गुणों की धारणा करना। चार प्रकार की भट्टी होती है, एक है ज्ञान भट्टी, एक है योग भट्टी, एक है दिव्य गुणों की भट्टी, एक है सेवा की भट्टी। योग भट्टी तो सबको पता है, ज्ञान भट्टी भी होती है, ज्ञान की देन देन, ज्ञान की चर्चा। 24 घंटे में कुछ समय हमारा हो जिसमें हम ज्ञान की चर्चा करें, डिस्कशन ऑफ नॉलेज। दो लोग मिलकर बैठे और सोचे और कहे कि आज की वरदान में क्या था, ये खुशी को गोली और खुशी को कैप्सूल और इंजेक्शन, ये सब क्या है। चर्चा आपस में दोनों मिलके, डिस्कशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान भट्टी। योग भट्टी तपस्या, सब जानते हैं। तीसरी है दिव्य गुणों की भट्टी। एक कोई भी गुण लेना, एक हफ्ते के लिए उस पर काम करना, जैसे अनुशासन, जैसे ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, उस पे काम करना, वो है दिव्य गुणों की भट्टी। तो आय फॉर दिव्य गुणों की भट्टी अर्थात इनकल्केट वर्चुअस। उसके बाद है जे। जे अर्थात जर्नी टू मधुबन। मधुबन में जाने की ये जो यात्रा है, ये प्रॉपर चैनल थ्रू हो एक। दूसरा, मधुबन में जाकर वहां पर लोग तपस्या छोड़कर एक दूसरों के अवगुण, वहां क्या हो रहा है उसकी डिस्कशन करने में लग जाते हैं। और दूसरी एक चीज, मार्केटिंग, परचेसिंग, शांतिवन के बाहर बहुत काम करने होते हैं उनको, परचेसिंग में लगे हैं जब से आए तब से, इसको उसको मिलने में ही लगे हैं। गए थे तपस्या करने और कुछ और ही कर रहे हैं वहां जाकर, या तो फिर भोजन, ये खाऊं वो खाऊं, ये टोली वो टोली। तो वहां जाकर क्या करनी है? तपस्या। और वहां पर भी कई लोग कहते हैं हमारी तो बहुत पहचान है, हम तो डायरेक्ट जाएंगे, ऐसा भी है. थ्रू प्रॉपर चैनल वन एंड वहां जाने के बाद भी सेल्फ चेकिंग के लिए वहां हम जा रहे हैं, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं. वहां के लोग, मधुबन निवासी क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सिखाने जा रहे हैं कि खुद के कल्याण के लिए जा रहे हो. वहां का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने जा रहे हो कि खुद के कल्याण के लिए जा रहे हो. परचिंतन परदर्शन करने जा रहे हैं या स्वचिंतन करने जा रहे हैं? स्वचिंतन. तो जब भी मधुबन में जाओ तो पूरी तैयारी से जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, नहीं तो दिन रात शॉपिंग, ये खरीदू वो खरीदू, या तो साइट सीइंग, इधर भी जाना है उधर भी जाना है उधर भी जाना है. उसके बाद एल, एल अर्थात लव फॉर वन बाबा, एक बाप से प्यार, एक से ही प्यार, बस ये युक्ति है. जिसने अपनी दिल कईयों में लगा रखी है, इसको फोन उसको फोन, इससे बातें उससे बातें, पुरुषार्थ डाइल्यूट हो जाता है. एक बहन थे, वरिष्ठ बहन, वो कहते थे दिल में सोफा नहीं रखना. सोफा होता है ना, दो तीन लोग बैठ जाएंगे, चेयर रखना जिसमें बाबा बैठे, ओनली वन चेयर अंदर, तो ताकि एक ही बैठे और एक ही याद रहे. तो लव फॉर वन बाबा. उसके बाद के, कीपिंग चार्ट. अभी अभी जो मुरली चली शांतिवन में अव्यक्त बाप दाता की, उसमें बाबा ने कहा अपना चार्ट खुद ही चेक करो, अपना चार्ट खुद ही रखो और अपना चार्ट खुद ही चेक करो. रोज खुद की चेकिंग होनी चाहिए, सेल्फ चेकिंग. उसके लिए थोड़ा सा एकांत निकालना पड़ेगा, एकांत में बैठकर स्वयं की चेकिंग करें. रात को सोने से पहले बाबा के सामने बैठकर चेकिंग हो कि आज सारा दिन भर सब ठीक रहा, कहीं श्रीमद तोड़ी तो नहीं, किसी को दुख तो नहीं दिया, कहीं ब्रह्मचर्य खंडित तो नहीं हो गया, अमृत वेला कैसा था, संबंधों में टकराव, बिटरनेस, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्या मैं श्रीमद पर रही या हलचल में रही? चेकिंग. उसके बाद है एम, एम अर्थात मुरली, मुरली केवल मुरली नहीं, मुरली चिंतन. और जितना हो सके यहां आकर सुननी है, क्योंकि कहा ना ये जो है ये किला है, इसमें वाइब्रेशन से एक, ये जो क्लास अभी यहां सुन रहे हैं आप, अगर कोई यहां कहीं दूर बैठ के कोई घर पे बैठ के सुने तो वो वाइब्रेशंस नहीं आएंगे उसको. यहां हम तपस्या के लक्ष्य से बैठे हैं, बुद्धि एकाग्र है, इसलिए मुरली यहां आकर. एक बार बाबा ने कहा था सेंटर पर जाना, मुरली सुनना, मुरली लिखना और वापस आ जाना, यह है पुरानी चाल. अब नई चाल कौन सी है? नई चाल है चिंतन, नई चाल है मनन, अध्ययन. मुरली में कोई बात आती है उसको वहां से उठाओ और उसके ऊपर चिंतन करो. मुरली में आया तुम सब भाई बहन हो, आया ना आज सुबह, तो पॉइंट्स लिखने हैं भाई बहन के संबंध में, कौन सी ऐसी बातें हैं संसार में जो भाई बहन होते हैं, हाउ इज दिस ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, व्हाट आर द 3 things 10 things अबाउट दिस रिलेशनशिप्स, ऐसी कौन सी 10 बातें हैं जो संसार में भाई बहन के आपस में होती है, ये चिंतन है. अपने आप को देना, वो दोनों प्यार करते हैं अपने आप से, एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते हैं, इस तरह की बात है, ये होगा चिंतन. खाली सुन लिया, मुरली में आ गया, एक दूसरे को भाई समझो बहन समझो, हो गया, उससे नहीं होगा, थोड़ा उसको आगे लेके जाना पड़ेगा. मुरली में जो आता है उसको पकड़ो और उसको विस्तार करो, तो चिंतन करना. उसके बाद में है एन, एन अर्थात नो, नो किस किस के लिए कहा है बाबा ने? नो सिनेमा। वो कहते हम सिनेमा नहीं देखते, हम ट्रेलर देखते हैं। नो वल्गर लिटरेचर, नो वेस्टफुल रीडिंग्स, नो बैड कंपनी। ऐसे दोस्त बना रखे हैं कि उनके साथ घूमना ही पड़ता है जबरदस्ती, क्योंकि दोस्त ही ऐसे गलत बना के रखे हैं जिनका ज्ञान योग से कोई लेना देना नहीं है, जो विकारों में जीते हैं पलते हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना। नो अनइथिकल रिलेशनशिप्स, ऐसे अनैतिक संबंध नहीं बनाने हैं। नो करप्शन, ऐसी जगह काम जहां पर झूठी झूठ बोलना पड़ता है, जितना हो सके उससे बाहर निकल जाना है। ऐसे बिजनेस कि जहां पर इतना दिन रात चिंतन है पैसों का और वस्तुओं का कि ज्ञान योग का समय ही नहीं है। जॉब ही ऐसा ले लिया है कि जिसमें जरा भी आराम नहीं है, टू मच फिजिकल एक्सर्शन है उसमें। ये सब हमारे लिए नहीं है, हम तपस्वी है, हम योगी है, हमको बैलेंस रखना है। वो जो हम कर रहे हैं निमित्त मात्र है, और अपनी नीड को, अपनी ग्रीड को हम नीड कहते हैं, वो है ग्रीड, लोभ, और हम उसको आवश्यकता नाम देते हैं, बट इट इज इन फैक्ट ग्रीड, लोभ है। और पैसा और पैसा और पैसा और पैसा, कितना पैसा, उसका कोई एंड? कोई एंड नहीं है, कितना भी मिल जाए तो भी कम ही है। नो, इधर उधर घूमना, अभी ये घूम के हो गया अभी उधर चलो, अभी वो घूम के हो गया अभी उधर चलो। कुछ भाई एक सेवा केंद्र से दूसरे सेवा केंद्र गए, रिट्रीट सेंटर, तपस्या के लिए 2 दिन की भट्टी, खुद ही सोचा चलो भट्टी करके आते हैं। शाम को पहुंचे बाबा के कमरे में, 1 घंटा रुके, और फिर दूसरे दिन साइट सीइंग के लिए निकल गए, शाम को ही आए, फिर से थोड़ा सा बैठे, फिर और शाम, तीसरे दिन साइट सीइंग पूरा, और सेंटर पे जाके कहा 2 दिन इतनी अच्छी तपस्या करके आए, और सारा टाइम किस में गया? साइट सीइंग में चला गया। जाते जाते बाबा के कमरे में टाटा करके आ गए, बस ये थी तपस्या 2 दिन की, योग मौन भट्टी। ऐसी भट्टी नहीं करनी है। तो नो की लिस्ट निकालनी है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो मैं कर रहा हूं नहीं करनी चाहिए, स्टॉप इट राइट नाउ। इंटरनेट प्री ऑक्यूपेशन, दिन रात एडिक्शन, टेक्स्टिंग एडिक्शन, मैसेज की एडिक्शन, व्हाट्सएप एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन, बंद कर तो कुछ नहीं होने वाला है, एडिक्ट हो गए उसके, दिन रात देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे। हाँ, वो बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ज्ञान योग बहुत अच्छे से हो सकता है इससे, पर यही माया का भी रूप है। एक क्लिक और ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार, तो इसको मिसयूज नहीं करना है। अगर ज्ञान योग के लिए कोई प्रयोग करे तो कितने सारे क्लासेस इसमें भरे जा सकते हैं, मुरली सुनी जा सकती है, चिंतन इसमें से किया जा सकता है, समय को सफल किया जा सकता है, सारी अव्यक्त वाणियां उसमें आ सकती है जो बीच बीच में पढ़ सकते हैं, किताबें उसमें आ सकती है, मैगजीन्स उसमें आ सकती है, सब आ सकता है, विकार भी आ सकते हैं, पर पाप भी, मार्ग भी यही है पाप का। टाइम वेस्ट, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन न्यूज, दिन रात न्यूज का ही एडिक्शन है कईयों को, न्यूज। वो पार्टी ने ये कहा वो क्या कहेगा, उसने ये कहा वो क्या कहेगा, वहां इलेक्शन में ये हुआ यहां क्या होगा, दिन रात एक्साइटमेंट है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। न्यूज चैनल्स, ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन बाइंग परचेसिंग, ऑनलाइन परचेसिंग, क्लिक घर पे आ जाती है चीज, क्या खरीदू। एक भाई है जो ज्ञान में चलता है, वो कहता है मेरी युगल जो है दिन रात परचेसिंग करती रहती है, अभी एक साड़ी खरीदी, अभी दूसरी दिन दूसरी साड़ी, पहली अभी खोली भी नहीं है दूसरी आ गई, कुछ दिखा ढूंढते रहती है ऑनलाइन क्या खरीदू, क्लिक करो और चीज आ जाती है, बाय ऑप्शन दबाओ आ गई, इतना आसान है। वो भी एक एडिक्शन है, ऑनलाइन न्यूज, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स, गेम्स गेम्स में लगे रहते दिन रात, गेम्स ही खेलते रहते उस पर। नो टाइम वेस्ट, एक सेकंड की कितनी कीमत है, वन आवर। संडे मूल्य शांतिवन मुरली चली ना, एक सेकंड इक्वल टू वन आवर। MNO उसके बाद में O, ऑब्जर्विंग साइलेंस। एक युक्ति क्या है, साइलेंस ऑब्जर्व करना, मौन। कितना देर हम मौन रहते हैं, सारे दिन भर सुबह से लेके रात तक बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। शांत मौन, मौन में पावर बहुत है, जो जितना मौन वो उतना शक्तिशाली। द ग्रेटेस्ट पावर, द ग्रेटेस्ट काम आर फेड। फिर पी, ये सेंटर निवासियों के लिए है, प्रिंटिंग लिटरेचर विदाउट टेकिंग परमिशन। कई सारे सेवा केंद्रों पर भाई बहने अपने ही पर्चे, अपने ही पाम्पलेट, अपनी ही किताबें बिना किसी के परमिशन के प्रिंट करते हैं। वो डिसाइड करते हैं यहां प्रोग्राम रखेंगे, उसके ये पर्चे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ। सब जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह है, बट दैट इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ यज्ञ कि प्रिंटिंग लिटरेचर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टर्स। उसके बाद है क्यू, क्यू में आता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल। जो भी सेवाएं करो वो क्वालिटी वाली हो, काम चलाऊ ना हो, आए और कहा कि बहन जी ने कहा ये कर दो, फटाफट कर दिया और चले, क्वालिटी उसमें हो। सेवा, योग, कुछ भी, जैसे वो एक माता फटाफट समझा दी थी, वो बा हमारा एक चित्र है ना प्रदर्शनी में, 7 दिन के कोर्स में, एक एक परिवार है जो ज्ञान में नहीं चलता, वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दूसरा एक परिवार है जो ज्ञान में चलता है जहां पे शांति है एकदम। तो वो माता कैसे समझाती, ये देखो ज्ञान में नहीं है ना तो रोटी बना रहे, उसमें दिखाए ना रोटी बना रही है माता, अब ज्ञान में आ गया अभी पूरी तल रहे, उसमें दिखा रहे पूरी, दिखाए सबने ये चित्र, 7 डे कोर्स की बुक देख लेना। दो परिवार है ना, एक परिवार में झगड़ा हो रहा है या रोटी बना रहे, दूसरे परिवार में पूरी बना रहे, ज्ञान में आ गए पूरी, ज्ञान में नहीं है रोटी, चलो आगे फटाफट फटाफट, टाइम कहाँ है समझाने के लिए, फटाफट फटाफट, पहले ये अभी है चलो आगे, ये आत्मा ये परमात्मा चलो आगे, घर में काम करने हैं, इनको ही समझाते बैठेंगे क्या। तो फटाफट फटाफट, क्वालिटी, कोई भी सेवा हो क्वालिटी हो। फिर है आर, आर अर्थात रिलेशनशिप्स डिटैच्ड। रिलेशनशिप कैसे हो हमारे इस परिवार में, डिटैचमेंट, सब एक साथ सब प्यार से रहेंगे परंतु फिर भी डिटैच्ड। बाबा ने ये नहीं कहा कभी कि सबके संस्कार एक हो जाए, एक कर दो कहा, एक है नहीं कहा, संस्कार तो अलग ही रहेंगे दो आत्माओं के, जैसे मम्मा और बाबा अलग अलग संस्कार है, पर ऐसे मम्मा ने संस्कार मिला लिए बाबा के साथ कि ऐसा नहीं लगता है कि उसके अलग है, पर आत्मा के वैसे देखा जाए तो दोनों के एकदम भिन्न संस्कार है, कहां तो बुजुर्ग और कहां तो यंग, कहां मेल कहां फीमेल, कहां तो वो गृहस्थी और कहां ये कुमारी, कहां वो बिजनेसमैन और ये जॉबलेस। संस्कार दोनों के एकदम भिन्न है, परंतु गायन दोनों का साथ है। मम्मा बाबा, वैसे दीदी दादी उनका भी लिए भी ऐसा ही कहते थे, पर संस्कार तो भिन्न रहेंगे, परंतु क्या करना है, मिला के चलना है। संस्कार मिलन की रास, और इस मिलाने में अटैचमेंट ना आ जाए। बस जहां अटैचमेंट आ गई वहां घृणा उत्पन्न होती है। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, उस व्यक्ति के प्रति घृणा आती है, फिर उसके अवगुण देख नहीं सकते, झगड़े होते हैं। इसके लिए पति पत्नी के लिए भी कहते हैं बीच बीच में दे शुड गो इन साइलेंस, बोथ बिल्कुल बात ना करे, कुछ कुछ दिन मौन में चले जाए, एक दूसरों को रिस्पेक्ट वापस कायम करने के लिए, नहीं तो रोज झगड़े रोज झगड़े रोज झगड़े रोज झगड़े। एक पति होता है, एक दिन रात को 12 बजे उठता है और इतना रोता है। उसकी पत्नी आती है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो कहता है आज से 25 साल पहले मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता, पर तुम्हारे पिताजी जज थे, उन्होंने कहा अगर तुमने शादी नहीं की मेरी बेटी से तो 25 साल के लिए मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। तो वो पत्नी पूछती है फिर तुम रो क्यों रहे हो? वो कहते हैं आज वो 25 साल पूरे हो रहे हैं, आज छूट चुका होता उधर से, पर यहां से तो 25 की तो कोई बात ही नहीं है, अभी छूटने वाले नहीं है। एक युगल होते हैं, उनको पुरस्कार मिलता है कि उनके जीवन में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आश्चर्य है, पति पत्नी एक साथ और आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ 30-40 साल में। तो समाज वाले सोचते हैं इनका सत्कार किया जाए, तो सत्कार होता है दोनों का। फिर पति को माइक दिया जाता है कि रहस्य क्या है, टेल द सीक्रेट ऑफ हैप्पी लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग मैरिड लाइफ। तो कहते हैं बहुत ही सिंपल है, हम दोनों की शादी हुई, हम घूमने गए तो मेरी पत्नी एक घोड़े पर बैठी और उस घोड़े ने उसको गिराया। तो वो खड़ी हो गई और कहा ये फर्स्ट टाइम है, घोड़े से कहा। फिर से बैठी घोड़े पर, अश्वारोहण हॉर्स राइडिंग, दूसरे बार फिर से उस घोड़े ने उसको गिराया। पत्नी ने कहा ये सेकंड टाइम है, फिर बैठी। फिर तीसरे बार बैठी, फिर से गिराया। पत्नी ने कहा ये थर्ड टाइम है, फिर से बैठी। फिर से घोड़े ने गिराया, उसने अपने बैग में से पिस्तौल निकाली और घोड़े को मार दिया वहीं पर। फिर ये पति भाग के आए, तुमने ये क्या किया? पत्नी ने कहा ये फर्स्ट टाइम है और तब से शांति हो गई कोई झगड़े, सारे झगड़े खत्म। तो संसार में तो ये सब चलता है, झगड़े ही झगड़े। आज की मुरली में ही है ना, पार्लियामेंट में झगड़े ही झगड़े है। अभी देखा ना, कल परसों ही श्रीलंका पार्लियामेंट में कैसे सब लोग झगड़ा किया, सब झगड़े ही झगड़े है संसार में। तो झगड़ा तो नहीं होना चाहिए, परंतु मोह भी नहीं होना चाहिए फिर। अच्छा, आपको एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या प्रिफर करेंगे, झगड़ा या मोह? दो आत्माएं हैं आपके साथ, एक दूसरी आत्मा है, उसके साथ झगड़ा ठीक है या मोह ठीक है? नहीं, एक चूज करना है, एक लेना है आपको। दो ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से एक लेना ही है, झगड़ा करना, झगड़ा ठीक है या मोह? नहीं, वो नहीं पूछ रहे, डिटैचमेंट नहीं। दोनों में से एक कौन सा लेंगे? माता है क्या लेगी, मोह कि झगड़ा, कौन सा ठीक है? नहीं, नन ऑफ द ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है। झगड़ा फिर भी ठीक है, क्योंकि मोह होता है ना बेचैनी, वो फोन, उससे एक्सपेक्टेशंस, वो हम फोन लगा रहे, फोन ही उत्तर ही नहीं दे रहा है। हम इधर से 10 मैसेजेस भेजे, एक भी मैसेज नहीं भेजा, और बेचैनी। झगड़ा तो झगड़ा खत्म, तुम उधर हम इधर, उसमें फोन करने की तो कोई बात ही नहीं है। दादी के पास दो बहनें विदेश की आई थी, उनका झगड़ा हो गया था, तो दादी ने कहा झगड़ा ठीक है, मोह नहीं चाहिए। वैसे तो दोनों नहीं चाहिए, पर बता रहे मोह में बेचैनी बहुत है, मोह में मिसिंग एक्सपेक्टेशंस बहुत है। तो कहाँ थे हम? N O P Q R, उसके बाद R S, S में S अर्थात सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब एकांत। रोज एकांत का समय अपने लिए निकालना है कि इर्द गिर्द कोई ना हो। टेरेस में जाओ, गार्डन में जाओ और चिंतन करो एकांत में बैठकर। कई बार मुरलियों में आता है एकांत में चिंतन। आज सुबह की मुरली में था, रात में विचार सागर मंथन करो तो बाप समान बनेंगे। तो एकांत में चले, स्थूल एकांत और सूक्ष्म एकांत, दो एकांत है। एक है स्थूल सॉलिट्यूड, आसपास कोई नहीं, वो है स्थूल। सूक्ष्म है एक के अंत में खो जाना, वो तो बहुत बड़ी ऊंची अवस्था है, पर स्थूल की भी आवश्यकता है। तो एस, उसके बाद है टी, ट्रैवल टू अनदर सेंटर। एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जब जाते हैं तो लेटर इज मस्ट। ऐसे नहीं कि हम तो जानते हैं हमारे पहचान के, हम ऐसे ही जाएंगे। एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाने की जो नियम नियमावली है उसको फॉलो करना है। नियम तोड़कर अगर जाएंगे तो फायदा भी नहीं होगा। कई लोग कहते हैं हम मधुबन डायरेक्ट चले जाते हैं, हमें तो किसी के लेटर वेटर की आवश्यकता नहीं है। फ्री में जाएंगे तो अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि फ्री में मिल जाए। परमात्मा प्रेम का अनुभव, कीमत उसके लिए भी चुकानी पड़ती है। फिर है यू, यू अर्थात यूटिलाइजिंग यज्ञ रिसोर्सेस इन अ वर्थवाइल मैनर। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पेट्रोल। लाइट, हमारे घर का लाइट हम ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं क्या? तो यज्ञ और मधुबन, मधुबन में जाते हैं तो कई बार देखते हैं हम वहां पर, बाहर गए और फैन चालू है। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, वाटर, वाटर कंजम्पशन, इकोनॉमी हो उसमें, फूड। मधुबन में देखते हैं इतना भोजन ले लेते थाली में और थोड़ा सा खाते और फेंक देते। इतनी बड़ी एक ग्लास भरकर चाय आधी पी और रख दी। यज्ञ का एक एक दाना मुहर है, बाबा कहते हैं। फूड वेस्टेज, टाइम वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज, पेट्रोल। जा सकते हैं पैदल, फिर भी कार चाहिए, गाड़ी, हर चीज में जाने के लिए गाड़ी चाहिए। यज्ञ के रिसोर्सेस मेरे लिए कम से कम वेस्ट हो, ये लक्ष्य रखना है बस मेरे ऊपर। और यज्ञ केवल वो ही नहीं है मधुबन या सेंटर, अपने घर को भी यज्ञ ही समझना है। जो पैसा वहां आ रहा है वो भी यज्ञ का ही है, हमारा नहीं है, यज्ञ का है, बाबा का है। घर बाबा का, सैलरी बाबा की, जॉब बाबा का, यही समझना है। सब कुछ उससे आ रहा है तो वो घर भी यज्ञ होगा, हमारी पालना यज्ञ से हो रही है, ये संकल्प। तो यू, उसके बाद में है वी, यू वी, वी अर्थात दो है उसमें, एक तो वैराग, एक युक्ति है स्वयं को मुक्त करने की, और दूसरी एक अच्छी सी बात है विवाह। अमृत वेला बाबा से विवाह रचाना है सूक्ष्म वतन में। वो आगे हम पीछे, बंधन में बंध गए उसके। उसके बाद में डब्लू, डब्लू अर्थात वॉश आफ्टर बॉवेल मोशन। जब भी पेट साफ करने जाए, मोशन के लिए जाए, उसके बाद में स्नान करना, ये नियम है यज्ञ का। उसके बहुत सारे मेडिकल भी कॉजेस है और वैसे प्यूरिटी के आधार से भी कॉजेस है, कारण है, तो वो एक नियम है डब्लू। उसके बाद में एक्स, एक्स अर्थात एक्सरे, एक्सरे अर्थात सेल्फ चेकिंग, दो बार होनी चाहिए, सुबह और शाम। रात को हो सके तो सोने से पहले फिर से, तो तीन बार। सुबह अमृत वेले थोड़ी सी चेकिंग, शाम का जो नुमा शाम का योग है उससे पहले चेकिंग सारे दिन भर की, और रात को सोते समय, अगर जिसका नुमा शाम ऑफिस में और ट्रेवलिंग में जाता है, रात में चेकिंग, और बीच बीच में भी चेकिंग होनी चाहिए। और लास्ट है झील एंड जेस्ट, झील अर्थात एंथुजियाज्म, अपनी सेवाएं उमंग उत्साह से करना है। जो भी करो ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह से करो, योग भी, तपस्या भी, मधुबन जाना भी, मर मर के, जबरदस्ती, दुखी होकर, नाराज होकर, ऐसी सेवाएं नहीं करनी है। खुशी खुशी से सेवा करनी है, किसी को समझाओ तो खुशी खुशी से, हर चीज खुशी खुशी से, खुशी की गोली, खुशी का इंजेक्शन, खुशी की टैबलेट, खुशी का सिरप, खुशी का टॉनिक, सब दो आत्माओं को। तो ये ऐसे कितने हो गए, वाई वाई अर्थात योगा ट्वाइस अ डे, योग का दो बार अभ्यास होना चाहिए ऑफिशियल, एक अमृत वेला 4 to 4:45 और दूसरा टाइम है 6:30 to 7:30 इवनिंग। जो ये नहीं कर सकते कम से कम 7 to 7:30, और जो कहते हैं हमारा तो जॉब है, हम ऑफिस में है, हम ट्रैवलिंग में है, जहां पर भी है, ये जो टाइम है 7 to 7:30 मौन हो जाना है। भले आप कर रहे ऑफिस में काम कर रहे कंप्यूटर में काम कर रहे, फिर भी एकदम बुद्धि बाबा के पास चली जाए। और जो जिनके पास काम नहीं है और व्यर्थ के काम ज्यादा है वो सब बाजू में रखे बैठ कर योग करना है। जो सेंटर पर आ सकते सेंटर पर आए, जो नहीं आ सकते अपने घर में ही एक बाबा का कमरा बनाना है, एक ट्रांसलेट ले लो और रख दो, और घर में विरोध है तो एक छोटा सा ट्रांसलेट केवल बिंदु वाला जिसमें कोई ब्रह्मा वगैरह नहीं है, वैसा भी आता है। योग करना है बैठ के, नुमा शाम का योग वैसा ही शक्तिशाली हो जैसा अमृत वेला हो। तो पहले तो अमृत वेला करना है, यहां पर कई लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए, अमृत वेला मिस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक दूसरा काम दे रहे, अमृत वेले की एक किताब है छोटी सी, देखिए सबने वो सब लोग ले लो, और अगला एक मास दिन रात वो किताब पढ़नी है, सुबह पढ़नी, दोपहर को पढ़नी, रात को पढ़नी, तब तक उसको पढ़ते रहो जब तक वो पूरी याद ना हो जाए, ताकि अमृत वेले का महत्व अंदर घुसे और तक हमारा अमृत वेला शक्तिशाली हो। तो ये सारी युक्तियां थी स्वयं को मुक्त करने की। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, जेड झील झील जेड ई ए एल झील अर्थात उमंग उत्साह, जेस्ट अर्थात उमंग उत्साह। तन के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक ज्योतिर्मय आत्मा, संगम युग का समय, प्रभु मिलन की वेला, मैं संसार की सबसे भाग्यशाली आत्मा, महान भाग्य, दैवी परिवार, परमात्मा ज्ञान और ये प्रभु प्रेम। बाबा आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब इस संसार का हमें कुछ नहीं चाहिए, तेरी श्रीमत, तेरी शिक्षाएं, तूने सिखाई हुई मर्यादाएं, बस यही जीवन, जीवन के सारे बंधन समाप्त हुए, मैं संपूर्ण मुक्त आत्मा हूं। अब बंधन कोई बचा है तो तेरे प्यार का, जो एक बंधन सभी बंधनों से मुक्त करने वाला है। जो भी युक्तियां, जो भी नियम और मर्यादा है, आपने दिए हैं, और जो अभी मैंने सुने इनमें से सभी मर्यादाओं को, युक्तियों को आपके सम्मुख मैं आत्मा संकल्प करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में लाऊंगी। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, अनुभव हो रहा है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा तिलक दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव, मर्यादा पुरुषोत्तम भव, संगम युगी जीवन मुक्त भव, बाबा का ये वरदान पाकर अब मैं फरिश्ता धन्य धन्य हो गया। मन शांत, बुद्धि एकाग्र, एक नए जीवन की फिर से आज शुरुआत, तीव्र पुरुषार्थी जीवन। भगवान साथ है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार, सफलता गले की माला, इसी संकल्प से आज मैं आत्मा एक नई शुरुआत करती हूं। शांति।